हरे कृष्णा। श्री श्री कृष्ण मन बलराम मंदिर स्कान वृंदावन के भाग्यशाली भक्तों, हम भक्ति शास्त्री भगवद गीता का तीसरा जो विभाग है, 13वें अध्याय से लेकर 18वें अध्याय का शुभारंभ करने जा रहे हैं। 13वें अध्याय का नाम है क्या है? 13वें अध्याय का नाम प्रकृति, पुरुष और चेतना। और सामान्य गीताओं में इसका नाम है प्रकृति पुरुष विभाग योग। प्रकृति पुरुष विभाग योग। तो इसमें जो प्रकृति है वो तो प्रकृति है, पुरुष है वो तो पुरुष है, प्रकृति पुरुष और चेतना ये क्या है? प्रभुपाद ने एक शब्द और चेतना इस अध्याय के शीर्ष में जोड़ा है, पुरुष प्रकृति और चेतना। चेतना के ऊपर फिर आगे आएंगे तब चर्चा करेंगे। सो इस वैसे देखा जाए एक दृष्टि से तो जब योग की सीढ़ी का परम लक्ष्य ही भक्ति योग है तो फिर आगे कुछ क्या जरूरत है और विस्तार से कुछ वर्णन करने की कुछ जरूरत है क्या? पहले ये प्रश्न उठता है। नहीं है, भक्ति योग हो गया तो योग की सीढ़ी तो पूरी हो गई, तो एक दृष्टि से यहां पूरा हो गया, भगवद गीता पूरी हो गई। परंतु 13वां अध्याय शुरू होता है अर्जुन के प्रश्न से, तो अर्जुन ने प्रश्न पूछ लिया। ये अगर माना जाए तो ये सबसे अच्छा कारण है कि अर्जुन ने प्रश्न पूछ लिया, तो उसको समझाने की जरूरत पड़ गई। तो एक तो ये बात हो गई। परंतु जो अर्जुन का ये प्रश्न है कुछ गीताओं में है ही नहीं। जो पहला श्लोक है 13वें अध्याय का, कुछ गीता की प्रतियों में ये पहला श्लोक है ही नहीं। नहीं है ना, ये नहीं है श्लोक। अब तो जब ये श्लोक ही नहीं है तो अर्जुन का प्रश्न ही नहीं है मानो। तो अर्जुन का ये प्रश्न क्यों है श्लोक? क्योंकि भाई भगवान क्यों बोलेंगे ऐसे ही? भाई कोई बात होगी तभी तो बोला होगा ना। तो अर्जुन का प्रश्न का श्लोक का संगति बैठता है। तो फिर भक्ति जब हो गई तो फिर आगे जरूरत क्या है इसकी? पहला तो ये प्रश्न उठता है। तो भक्ति का ज्ञान के साथ संबंध क्या है? 12वें इस अध्याय का 7वां श्लोक पढ़िए। समुद्रदा मृत्यु संसार सागरात भवामी निचरात पर मैं आवेशित चेतसाम। तो भगवान यहाँ एक प्रकार का वचन दे रहे हैं कि मैं मृत्यु सागर से, जन्म मृत्यु से उसको पार कर लूंगा। अब प्रश्न ये उठता है कि जन्म मृत्यु में पड़ता क्यों है जीव और उससे पार होने का साधन क्या है? तो पड़ता क्यों है? क्योंकि प्रकृति के तीन गुणों के प्रभाव से पड़ता है। तो उस विभाग को जानना आवश्यक है ऐसे लग रहा है। और जब वो जानेंगे हम कि जीव के बंधन का कारण है प्रकृति के तीन गुण, और तीन गुण और कर्म, तो कर्म उसे तो कर्म कहाँ होते हैं ये प्रश्न उठता है। कर्म कहाँ होते हैं? भाई शरीर में होते हैं, शरीर में होते हैं। तो फिर ये जानना इसलिए जरूरी है कि हमारे को दर्शन से ये पता लगे कि बंधन पड़ता कैसे है और उससे मुक्त कैसे हुआ जाता है, तो फिर जीव बंधन से मुक्त हो जाए। एक ये आवश्यकता है। इसको कुछ लोग कहते हैं कि 6 अध्याय ज्ञान के हैं, लेकिन वास्तव में ये ज्ञान के अध्याय नहीं है। ज्ञान के माध्यम से भक्ति को पहुंचना है। पहले 6 अध्याय कर्म के माध्यम से भक्ति तक पहुंचना है और अंत के 6 अध्याय ज्ञान से भक्ति तक पहुंचना है। और इसीलिए भक्ति के अध्याय बीच में रखे हैं कि बिना भक्ति के सहारे के दोनों कोई फल नहीं दे सकते। तो ये मानना कि अब भक्ति से अलग नहीं है, ये ज्ञान के द्वारा भक्ति तक पहुंचना है, तो ऐसे माना जाए कि इसमें ज्ञान मिश्रित भक्ति होगी और शुद्ध भक्ति भी का दर्शन भी होगा, कहीं ना कहीं शुद्ध भक्ति का भी इसमें दर्शन होगा। तो ज्ञान का लक्ष्य क्या होता है? जनरली कोई कहे तो माया से मुक्त होना और भगवान में आसक्त होना। ज्ञान का लक्ष्य क्या है? माया से मुक्त होना और भगवान में आसक्त होना। तो ये ज्ञान का लक्ष्य है। अगर ये कोई भी ज्ञान अगर इस लक्ष्य की ओर हमको ले जाता है तो वो भक्ति के लिए सहायक है, तो फिर भक्ति में उसकी आवश्यकता है, क्योंकि वो ज्ञान हमारे को भक्ति तक पहुंचाने का सहायक है, क्योंकि भौतिक जगत से हमारी वृत्ति करता है और कृष्ण में हमारी आसक्ति करता है। तो बिना भक्ति के ज्ञान और कर्म भी कोई फल नहीं दे सकते। तो सीधा कोई संबंध नहीं है 12वें और 13वें अध्याय में, परंतु फिर भी 13वां अध्याय शुरू हुआ है और शुरू हुआ है अर्जुन के प्रश्न से। अब अर्जुन का प्रश्न क्या है? इसका जो पहला विभाग है उसमें एक ही प्रश्न है, कोई समझो कि एक ही श्लोक है, अर्जुन के 6 प्रश्न। अब आइए अर्जुन के 6 प्रश्न वाला श्लोक पढ़ते हैं। अर्जुन वाच प्रकृतिम पुरुषम चैव क्षेत्रम क्षेत्रज्ञम एव च एतद्वेदिच्छामि ज्ञानम ज्ञेयम् च केशव। अर्जुन 6 शब्द यहाँ है वो ऐसे शब्द हैं जैसे हमने 8वें अध्याय में पढ़े थे, ब्रह्म ज्ञान आध्यात्मिक। तो ये क्या परिवाची शब्द हैं वैदिक संस्कृति में? तो ये शब्द हमारे वैदिक भाषा में सामान्य शब्द हैं, लेकिन अर्जुन उनका कृष्ण की मत में क्या अर्थ है वो जानना चाहते हैं। जैसे ब्रह्म परमात्मा का ये भी वेदों में प्रचलित शब्द है, ब्रह्म क्या है, परमात्मा क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, परंतु कृष्ण का उसमें राय चाहते थे प्रमाणिक रूप से। तो यहाँ भी इन 6 प्रश्न ये जो 6 शब्द हैं इसकी परिभाषा भगवान श्री कृष्ण के मुख से अर्जुन सुनना चाहता है। ये 6 प्रश्न क्या है? पहला है प्रकृति। प्रकृति का मतलब 3 गुणों की माया, भौतिक प्रकृति। पुरुषम का मतलब है भोक्ता। तो जीवात्मा भी भोक्ता है और परमात्मा तो भोक्ता है ही, तो पुरुष में 2 विभाग आ जाएंगे, जीव और परमात्मा। चाहे वह क्षेत्रम, फिर क्षेत्र क्या है? अब क्षेत्र क्या है वास्तव में? ये भौतिक जगत क्षेत्र अगर वैसे कहें तो किस किस का बना हुआ है? प्रकृति का है, बात प्रकृति ही है वो, लेकिन अब दूसरा उसके लिए शब्द है क्षेत्र। क्षेत्र हम किसको कहते हैं वैसे? हमारी सामान्य भाषा में खेत कहते हैं जिसमें बीज बोया जाए और फल हो। बीज बोएंगे और कुछ फल हो। तो कर्मों का बीज कहाँ बोया जाता है? शरीर में। तो उसमें उसका फल भोगना पड़ता है जीव को। तो क्षेत्र है शरीर। अब क्षेत्रज्ञ में ये बच्चा और बताइए क्षेत्रज्ञ कौन है? तो क्षेत्रज्ञ एक तो भाई जो खेत में बीज डालेगा फल लेगा वो तो क्षेत्र को जानेगा ही, वो तो है जीवात्मा। सब क्षेत्रों का जानने वाला भी तो एक है सरकार, जिसके पास सब जमीन भूमि का पंचीकरण है, किसकी भूमि कहाँ है। तो दूसरा क्षेत्रज्ञ है परमात्मा। क्षेत्रज्ञ हैं दो। एतद् वेदम वेदितुम इच्छामि, ये मैं जानना चाहता हूं। अब दो शब्द और कह रहे हैं, ज्ञानम, ज्ञान क्या है अथवा ज्ञान कैसे अर्जित किया जाता है या ज्ञान के लक्षण क्या है, और ज्ञेयम, ज्ञान का लक्ष्य क्या है। ज्ञान प्राप्त करें तो क्यों करें, उससे किसको प्राप्त करना है। और केशव कह के भगवान को संबोधन करते हैं केशव। चक्रोतिपाद श्लोक के भाव को ऐसे लिखते हैं, मैं समझता हूं हमारे इसमें नहीं अनुवाद है इसका, है क्या पहले का नहीं होगा। चक्रोतिपाद कहते हैं पहले, पहले और दो साथ होंगे ना दोनों, पहला और दोनों साथ होंगे। चक्रोतिपाद से मर्यादा सीखते हैं, पहले हमारे को भगवान की भक्ति को प्रणाम करना चाहिए, जिसकी कृपा से ज्ञान वालों को भी फल तभी मिलता है जब उसमें थोड़ी भक्ति होती है। तो पहले तो हमको भक्ति को प्रणाम करना चाहिए। ऐसे चक्रवर्तीपाद इस विभाग को ऐसे शुरू करते हैं कि भक्ति बड़ी दयालु है, उसको प्रणाम करते हैं। जो थोड़ा सा ज्ञान में मिल जाती है तो ज्ञान वालों को ज्ञान का फल मिल जाता है। तो ये 6 अध्याय गीता के ज्ञान मिश्रित भक्ति का वर्णन करते हैं। मुख्य रूप से इन 6 अध्यायों में क्या है, और जो ज्ञान मिश्रित भक्ति है कितने प्रकार की है। ज्ञान मिश्रित भक्ति 2 प्रकार की है, प्रधानीभूता ज्ञान मिश्रित और गुणीभूता ज्ञान मिश्रित। वो ज्ञान मिश्रित जिसमें भक्ति बहुत ज्यादा है, ज्ञान कम है, जैसे 7वें अध्याय में था, और ऐसी भक्ति जिसमें ज्ञानी ज्ञान है लेकिन थोड़ी सी भक्ति जोड़ी है ज्ञान के फल के लिए, तो उसको गुणीभूता कहते हैं। तो इसमें गुणीभूता नहीं है प्रायः, प्रधानीभूता है, नहीं तो उसको भक्ति ही नहीं कहते हैं उसको। तो उसमें भक्ति लगाते लेनी, लेकिन फिर भी उसमें भक्ति है नहीं तो कोई फल नहीं मिलता है, इसलिए चक्रवर्तीपाद ने विभाजन ऐसे किया है। इन 6 अध्यायों में केवला भक्त भी अप्रत्यक्ष रूप से दर्शाई गई है। इन 6 अध्यायों में भी केवला भक्ति अदृश्य रूप से वर्णित है। तो 13वें अध्याय में है क्या, चक्रवर्तीपाद का है? कहते हैं इसमें है शरीर, जीव, परमात्मा, ज्ञान का अभ्यास, जीव और प्रकृति, जीव और प्रकृति। तो ये इतना विषय इस अध्याय में है। बीच के 6 अध्यायों में क्या पढ़ा हमने, चक्रवर्तीपाद लिखते हैं कि केवला भक्ति से भगवान की प्राप्ति करते होती है, और तीन और भी पूजा की पद्धतियां हैं। एक एकत्व न पृथकत्व न बहुधा, उसका भी वर्णन हुआ है उसमें, प्रधानीभूता भक्ति का भी वर्णन हुआ है उसमें, ठीक है। आई एम इन क्लास नाउ, हरे कृष्ण। तो ज्ञान मिश्रित भक्ति का वर्णन है जिसमें निष्काम कर्म योग करते हैं, ये पहले 6 अध्यायों में है। तो 6 अध्याय ज्ञान का वर्णन करेंगे, जिसमें पहले शरीर का वर्णन करेंगे, फिर क्षेत्रज्ञ का वर्णन करेंगे, फिर ज्ञान प्राप्त करने का वर्णन करेंगे और ज्ञान का लक्ष्य क्या है ये वर्णन होगा। तो ये सामान्य बात है। अब दूसरा विभाग इस अध्याय का है, 2 से 7 श्लोक तक। 2 से 7 तक है, भगवान श्री कृष्ण 3 शब्दों का वर्णन करके परिभाषा दे रहे हैं। किसकी? पहले क्षेत्र की, फिर क्षेत्रज्ञ की और फिर ज्ञान की। क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ और ज्ञान। तो आइए दूसरा श्लोक पढ़ते हैं। श्री भगवान वाच, इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रम् इति अभिधीयते, एतद्यो वेति तं प्राहो क्षेत्रज्ञम् इति तद्विदुः। श्री भगवान कृष्ण कह रहे हैं इदम शरीरम कौन्तेय, ऐसे इशारा करके अर्जुन के ही शरीर को दिखा रहे हैं, अपने को नहीं, भगवान का शरीर क्षेत्रज्ञ नहीं है। अर्जुन को कहना ये जो शरीर है ना तुम्हारा, इसको क्षेत्र कहते हैं। इदम शरीरम कौन्तेय हे कुंती पुत्र, क्योंकि अर्जुन को ही इशारा करके कहेंगे हे कुंती पुत्र ये जो तुम्हारा शरीर है ना इसी को क्षेत्र कहते हैं। फिर कहते हैं जो इस शरीर को जानता है उसको क्षेत्रज्ञ कहते हैं। बहुत सादी सरल भाषा में ये भगवान ने उत्तर दे दिया। चक्रवर्ती पाद कहते हैं इस श्लोक में भगवान क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का कि जो प्रश्न है उसका उत्तर दे रहे हैं। 6 विषयों में से जो दो विषय हैं उनका उत्तर दे रहे हैं। तो जब शरीर क्षेत्र है तो शरीर में और क्या है? शरीर है तो इंद्रियां भी साथ में, शरीर और इंद्रियां, जिसमें करते क्या है? भोग। भोग करेंगे तो हो गया का क्या होगा? तो कर्मों के फल, कर्मों के फल का वृक्ष उगना शुरू हो गया और फिर बार बार जन्म लेना पड़ेगा। कोई कहता है ये मैं शरीर हूं, मैं ये मेरा शरीर है, ये बद्ध अवस्था है, ये जीव की बद्ध अवस्था है। चक्रवर्ती पाद जो मैं और मेरा नहीं मानता है इस शरीर को वो मुक्त है, ये परिभाषा बता रहे हैं। क्षेत्र शरीर है तो जो शरीर को मैं मानता है वो बद्ध है, जो शरीर को मैं नहीं मानता है वो मुक्त है, ये सीधी बात बता रहे हैं। तो क्षेत्रज्ञ के यहां परिभाषा, जीव अगर क्षेत्रज्ञ है तो उसमें 2 अर्थ लिखते हैं। क्या 2 अर्थ हैं? एक जो खेत को जोतता है, हल चलाता है और जो उसका फल लेता है। प्रायः ऐसा होता है कि हल चलाता है किसान और फल लेता है जमींदार, ऐसा नहीं है। दोनों काम जो करता है, जो क्षेत्र में हल जोतता है और फल लेता है उसको क्षेत्रज्ञ कहते हैं। जो दोनों काम करे, फल का भोग करे और कर्म का बीज बोए, तो कर्म को बीज बोने वाला शरीर में और उसका भोग करने वाला क्षेत्रज्ञ कहलाता है। दोनों काम। और एक श्लोक भागवत से इसके लिए चक्रवर्ती पाद देते हैं। ये श्लोक 11वें स्कंद के 12वें अध्याय का 23वां श्लोक है। चक्रवर्ती पाद इस तात्पर्य में दे रहे हैं। अदन्ति चैकं फलमस्य गृद्धा गृध्रा ग्रामे चार एकं अरण्यवासा हंसय एकं बहुरूपमिज्जहि मायामयं वेद सवेद वेदम। 11, 12, 23 अदन्ति चैकं फलमस्य गृध्रा। तुलना कर रहे हैं, दो प्रकार के फल भोगने वाले हैं। एक कामी संसारी भोगी जो अपने भोग का फल भोगता है, और दूसरा हंस जैसा सन्यासी जो इस शरीर से भक्ति का फल भी भोगता है। तो दो हो गए कि नहीं हो गए? ये दोनों की तुलना की गई है। एक का फल बंधन है, एक का फल मुक्ति है। हमारे को प्रमाणिक गुरु का शरण लेकर इस शरीर रूपी वृक्ष को समझना चाहिए। अच्छा, शरीर का वृक्ष से कहीं तुलना पहले दी गई है, आपने पढ़ाया क्या? समाने वृक्षे है ना एक श्लोक, ये शरीर वृक्ष के समान है। हाँ, गीता में नहीं है परंतु तात्पर्य में है। तात्पर्य में है, यह शरीर वृक्ष है और उसके अंदर दो पक्षी है ना, समाने वृक्ष, वृक्ष के समान, तो द्वा खगा, दो उसमें पक्षी है, एक फल खाता है और दूसरा साक्षी है ना। ये श्लोक पढ़ा है ना सदा, उस श्लोक में दो प्रकार के लिखे हैं। तो लिखते हैं जो गुरु का शरण लेता है और इस वृक्ष को जानता है, तो इस ज्ञान वृक्ष को जानते हैं। ये श्लोक दिया क्यों चक्रवर्ती पाद ने? क्योंकि उसमें लिखा है शरीर को क्षेत्र कहते हैं, और जो इसको जानता है उसको क्षेत्र के कहते हैं। तो ये जानता है कि बात के ऊपर, यह इसमें भी जानता है शब्द है श्लोक में, तो इसलिए लिखे हैं कि जिसको क्षेत्र कहा गया है वही वृक्ष है। तो अब शरीर को क्षेत्र कहें या वृक्ष कहें, एक ही बात है ना, वृक्ष भी वही क्षेत्र भी वही। अब फिर लिखा है एकम बहुरूपम इज्जई, शरीर नाना रूपों में प्रकट होता रहता है क्योंकि बदलता रहता है अपने फल भोगने के लिए। मायामयम, माया से बना हुआ, और वेद सवेद वेदम, वेद में जो इनका अर्थ जानता है ऐसे, वो असल में इस शरीर के अर्थ को वास्तव में जानता है। गृध्र जो शब्द है इसमें उसका अर्थ है जो कामनाओं से भरा हुआ है। वैसे गिद्ध किसको कहते हैं हमारी भाषा में? गीध, जो हाँ वो मांस आकार। और ऐसे सारे ही लोग संसार में हैं जो कलमों के फल को भोगना चाहते हैं, वो इस वृक्ष का कौन सा फल भोग रहे हैं? सुख और दुख। और दूसरे जो है, कोई सुख भोग रहा है संसार में, कोई स्वर्ग में जाके सुख भोग रहा है, कोई संसार में नरक में दुख भोग रहा है, लेकिन तो ये दोनों फल हैं इस वृक्ष के, स्वर्ग या नरक, दुख या सुख, ये दोनों हैं। परंतु जो हंस जैसे व्यक्ति हैं, जो कहाँ रहते हैं, वन में रहते हैं, अरण्य शब्द है, जो वन में रहते हैं, जो मुक्त जीव है, वो दूसरा फल खाते हैं, वो सुख है और उनको मुक्ति का फल मिलता है। तो ये शरीर दोनों फल दे सकता है, इसका अर्थ ये सर दोनों फल दे सकता है, भोगियों को संसार का या स्वर्ग का सुख और दुख, और ज्ञानियों को और भक्तों को मुक्ति का या भगवान की सानिध्य का सुख दे सकता है। तो शरीर से दोनों फल मिल सकते हैं, इसका अर्थ ये हुआ। ये संसार रूपी वृक्ष, इसके बहुत रूप हैं, कोई स्वर्ग में जाता है, कोई नरक में जाता है, कोई मुक्ति प्राप्त करता है, ये शरीर का ये तीनों चीजें दे सकता है। इसको माया मय कहा जाता है, क्योंकि ये माया शक्ति से उत्पन्न होता है। तो अब प्रकृति को और क्षेत्र को एक कहें तो कोई अंतर होगा क्या? जो क्षेत्र है वही प्रकृति है, क्या ख्याल है भाई? कहां से शरीर बना? प्रकृति से। हाँ, तो जो प्रकृति है वही क्षेत्र है एक दृष्टि से। और इसको जानने के लिए गुरु का शरण लेना पड़ेगा, इज्जयी। इज्जयी का अर्थ है गुरु के शरण में जाना और वेद का अध्ययन करना। तद्विदा, यही शब्द गीता में है, जो इसको जानता है वो क्षेत्रज्ञ है। बलदेव विद्याभूषण जी लिखते हैं, जीव का स्वभाव, इसी शब्द को प्रभुपाद ने लिखा है चेतना, जीव का स्वभाव, और फिर लिखा है भगवान, उसको हमारे इस अध्याय के नाम में क्या लिखा है? पुरुष। और फिर लिखा है जड़ प्रकृति। ये तीन विषय, क्या तीन विषय? चेतना, पुरुष और प्रकृति। ये पहले भी वर्णन हुआ है, 12 अध्यायों के अंतर्गत ये वर्णन हुआ है, परंतु फिर अधिक जानकारी इन 6 अध्यायों में इसके विषय में दी जाएगी। तो अध्याय का शीर्ष कहां से लिया प्रभुपाद जी ने? बलदेव विद्याभूषण के 3 शब्दों से। ठीक है, बोला फिर ये ज्ञान वाला हम अध्ययन क्यों करें? हम तो भक्त हैं, भक्ति में जाना चाहिए, हमको ज्ञान का अध्ययन क्या क्यों करें? तो अब बलदेव विद्याभूषण लिखते हैं, भक्ति के प्रवेश का द्वार है ज्ञान। भक्ति के प्रवेश का ज्ञान है द्वार है ज्ञान। जैसे राज विद्या राज गुह्यम, वो उसका नाम भी तो विद्या है ना। तो इस 13वें अध्याय में भगवान विस्तार के साथ शरीर, जीव और भगवान, इसके बारे में विषय में वर्णन करेंगे। पहले 6 अध्यायों में जीव आत्मा को जानने के लिए, इसका मतलब आत्म साक्षात्कार करने के लिए निष्काम कर्म योग साधन बताया गया, और फिर उससे परमात्मा का ज्ञान होता है। परमात्मा का ज्ञान प्राप्त होगा, पहले निष्काम कर्म से आत्म साक्षात्कार होगा, फिर परमात्मा का ज्ञान होगा, ये पहले 6 अध्याय। अब दूसरे 6 अध्याय जो थे उसमें भगवान की भक्ति कैसे करनी चाहिए, और उसके साथ भगवान की विभूतियों का वर्णन है। शुद्ध भक्ति ही केवल भगवान को बस में कर सकती है, ये भी वर्णन हुआ। फिर मिश्रित भक्ति का भी वर्णन है, जो परमात्मा को जानने वाले हैं योगी आदि, उनका भी वर्णन है। उससे क्या होगा, मुक्ति मिलेगी, उनको मुक्ति मिल जाती है। अगर मुक्ति नहीं चाहेंगे, ज्ञान वाले अगर नहीं है, याग वाले नहीं है और कर्म वाले हैं तो क्या मिलेगा, धन मिलेगा। कर्म वाले हैं तो धन मिलेगा, ज्ञान वाले हैं तो ज्ञान मिलेगा और योग वाले हैं तो परमात्मा को जानेंगे तो मुक्ति मिलेगी बस। परंतु ये भी शुद्ध भक्तों का संग करें तो ये भी शुद्ध भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। तो और वर्णन क्या था उसमें, भक्ति ज्ञान के साथ मिश्रित, और ज्ञान मिश्रित से भगवान की ऐश्वर्य के धाम की प्राप्ति होती है, कृष्ण की माधुर्य की नहीं होती है। अब इन 6 अध्यायों में प्रकृति और पुरुष के मिश्रण से भगवान का जो स्वरूप है, कर्म कैसे कार्य करता है और भक्ति और ज्ञान कैसे फलीभूत होते हैं, इसका वर्णन इसमें किया जाएगा। तो वास्तव में उद्देश्य क्या है इन 6 अध्यायों का, ज्ञान। परंतु ज्ञान को समझाने के लिए शरीर का क्या स्वभाव है ये जानना चाहिए, जीव का क्या स्वभाव है ये जानना चाहिए और भगवान का क्या स्वभाव है ये जानना चाहिए। तीनों चीजें जाननी है, पुरुष प्रकृति और चेतना। तो जीव का शरीर से कैसे संबंध है ये भी जानना है। तो इन बातों को समझाने के लिए भगवान यहां अब शुरुआत कर रहे हैं। पहले कहते हैं, हे कुंती पुत्र, इस शरीर को जानकार क्या कहते हैं, क्षेत्र कहते हैं। तो शरीर में अभी तक आपको कितनी चीजें बताई थी, शरीर में क्या है, शरीर इंद्रियां और तीसरा एक चीज और चीज लिखते हैं, प्राण। बिना प्राण के, अगर प्राण नहीं है तो बल नहीं है, बल नहीं है तो क्रिया नहीं है, क्रिया नहीं है तो फल तो होगा ही नहीं। तो प्राण जब क्षेत्र शब्द कहें तो हम तीन उसका अर्थ समझें, क्या, शरीर इंद्रियां और प्राण, इतना लिखा है। क्यों ऐसे लिखा गया, इसको क्षेत्र क्यों कहा गया, क्योंकि जीव के सुख भू सुख और दुख का कारण ये शरीर है और जो इस शरीर को जानते हैं, इसके वास्तव स्वरूप को जानते हैं शरीर के, उनको क्षेत्रज्ञ कहा जाता है। शरीर के वास्तविक स्वरूप को जानने को वाले को क्षेत्रज्ञ कहा जाता है। अब क्षेत्र का जानने वाले का अर्थ क्या है, आगे ये कुछ और कर रहे हैं। जो इस शरीर को जानता है वो अपने आप को ये जानता है कि मैं शरीर से अलग हूं। भाई आप शरीर को कैसे जानोगे, जब शरीर से अलग होगे तब जानोगे ना, आप शरीर ही हो तो फिर क्या जानोगे अपने आप को। आप शरीर से अलग हो इसलिए शरीर को जान सकते हो। जैसे कोई आदमी सोया हुआ है, खा रहा है और क्रिया कर रहा है, वो जानता है कि मैं नहीं कर, ये शरीर सोया है, आराम शरीर ने किया है, मैं तो इससे अलग हूं। तो ये मुख्य बात कह रहे हैं। परंतु वो मूर्ख नहीं जानता है ये बात, इसलिए बंधा हुआ है। वो अपने आप को देव समझता है, कभी मानव समझता है, कभी पशु समझता है। तो ये शरीर हमें सुख दुख का बंधन भी डाल सकता है और मुक्ति का प्रसाद भी दे सकता है। फिर यही श्लोक सुख दुख के लिए बलदेव विद्याभूषण में भी ये श्लोक दिया है, कौन सा, 12-13-23। अब श्रील प्रभुपाद जी का तात्पर्य आप खोलिए, किताब पढ़िए। अर्जुन 6 चीजें जानना चाह रहा है, छह चीजों का प्रभुपाद ने शब्द अर्थ लिखा है, ठीक है, लिखा है ना सबका। क्षेत्र किसको कहते हैं, क्षेत्र, ठीक है। तो जब अर्जुन ने यह पूछा तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि क्षेत्र शरीर को कहा जाता है और इसको जो जानता है उसको क्षेत्रज्ञ कहा जाता है। अब ये क्षेत्रज्ञ शरीर किसके लिए है, प्रभुपाद जी लिखते हैं, बद्ध जीव के लिए। किसके लिए है? इसका अर्थ यह है कि मुक्त जीव कोई प्रभुपाद जी के तरह धरती के ऊपर आते हैं तो उनका ये क्षेत्र कोई फल संसार के बंधन का नहीं देगा। वो मुक्त जीव के लिए नहीं है क्षेत्र। अब यह तो बहुत बड़ी बात है, ये जो जिसको क्षेत्र कहा गया है ये बद्ध जीव के लिए है, मुक्त जीव के लिए नहीं है। मुक्त जीव भले शरीर में आए भी परंतु उसके कर्म के फल से बंधन में नहीं पड़ता है, ये मुख्य बात है। इसका तात्पर्य इसका ये, और बद्ध जीव क्यों बंधन में पड़ गया है, प्रभुपाद जी लिखते हैं, जरा देखो, भौतिक प्रकृति के ऊपर प्रभुता जमाने की जो उसका प्रयास है, भावना है, उसके कारण वो बंधन में पड़ता है। और जितना उसमें सामर्थ्य है उसका ही उतना ही वैसा ही उसको शरीर मिलता है। जितना सामर्थ्य है अगर उसमें प्रकृति को बस में करने के लिए जो प्रयास कर रहा है उसमें ज्यादा है तो देवता बना देंगे, तो किसी एक लोक को चला लेगा, चंद्र लोक को चला लेगा। अगर सामर्थ्य कम है तो राजा बना देंगे इस धरती के ऊपर, कहीं एक देश को चला लेगा, और उससे भी जरा उसमें सामर्थ्य कम है तो कहीं फैक्ट्री का मालिक बना देंगे। जैसे आप लोग हैं, कोई कहाँ सेवा कर रहा है अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार, तो शरीर का सेवा अलग अलग हो रही है। तो ऐसे कार्यशीलता जिससे होती है उसको क्षेत्र कहते हैं। अब कार्यशीलता कौन से आधार पे होती है? उसमें क्या क्षमता है कार्य करने की, वैसे ही उसको शरीर दिया जाएगा। जैसे प्रभुपाद जी कभी कहते हैं भाई बड़े आदमी को जो शरीर दिया है उसके ऊपर बड़ा कर दायित्व भी बड़ा है, कर्तव्य बड़ा है, तो दायित्व भी बड़ा है, सेवा भी बड़ी उनको देनी पड़ती है, माने तनख्वाह ज्यादा क्यों मिलती है। एक कहावत है, जो मजदूर मजदूरी कर रहा है बाहर उसको 500 रुपया दिहाड़ी मिलती है और धूप में काम करता है, जो उनके ऊपर सुपरवाइजर छाया में बैठा होता है उसको दिहाड़ी 2000 रुपया मिल जाती है, और इन दोनों के ऊपर जो मैनेजर है वो आता ही नहीं है, घर से फोन पे काम करता है, उसको 5000 दिहाड़ी मिलती है ना। ऐसे तो ऐसे जिसमें जितनी क्षमता है वैसा ही उसको शरीर दिया है, वो शरीर से उतना काम कर रहा है। कैसे मिला है? अपने कर्मों से मिला है। अब प्रभुपाद लिखते हैं ये शरीर क्या है, ये आपको मैंने पहले कहा था, अब बताइए शरीर क्या है? इंद्रियों का समूह है। शरीर क्या है? इंद्रियों का समूह है, और इसमें क्या है? प्राण है। अब जब प्राण है और इंद्रियां हैं तो क्या करेगा शरीर, बताइए? प्रभुपाद जी कहते हैं वो इंद्रियों का भोग करेगा, और जितना सामर्थ्य है उतना ही करेगा, इसीलिए तो ये शरीर मिला है। तो भोग कैसे करेगा? प्राण होगा तब करेगा ना, बल होगा तब करेगा। प्राण ओज देता है, प्राण से क्या मिलता है? ओज, तभी तो काम कर पाएगा। इसलिए इस शरीर को क्षेत्र कहा गया है। किसके लिए? दोबारा प्रभुपाद ने लिखा है किसके लिए? इसलिए इस शरीर को क्षेत्र कहा गया है क्योंकि, पढ़िए 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 लाइन पढ़िए, नहीं नहीं वो नीचे चले गए, वो हो गया इसके बाद। हाँ बद, ये मुख्य बात कौन सी मैं कहना चाह रहा हूँ दोबारा, क्या बद्ध जीव के शरीर को क्षेत्र कहते हैं। देखो जिसका जीव को क्षेत्र कहते हैं ना शरीर, उसका अग्नि संस्कार करते हैं, और जिसको क्षेत्र नहीं जानते हैं उसको समाधि देते हैं। ये बहुत बड़ा अंतर है दोनों में, देखा जो जो सब सन्यासी को समाधि देते हैं ना, उसको अग्नि संस्कार नहीं करते, बोलते हैं इनका तो जन्म को कोई रहा ही नहीं, इसका कोई कुछ नहीं रहा अभी इसके कोई फल भोगने का, वो तो हाँ गल जाएगा। तो दोनों में अंतर है। ये एक ये शब्द कई बार हम पढ़ा रहे लेकिन ऐसे कभी नहीं बोला है। साफ शब्द यहाँ दो बार आया है कि बद्ध जीव के लिए क्षेत्र ये है, ठीक है। तो जो इस शरीर से अपने आप को संबंधित समझता है उसको क्षेत्रज्ञ कहते हैं, जो इस क्षेत्र को जानता है। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को जानना इतना मुश्किल नहीं है, प्रभुपाद कहते हैं। अब प्रभुपाद जी कौन सा श्लोक कह, कौन से श्लोक के आधार के ऊपर आगे की लाइन लिख रहे हैं बताइए जरा। हाँ देहिनु अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांत प्राप्ते धीरस्तत्र दो का तेरा है ना, वो लिख नाम श्लोक नहीं लिखा है लेकिन यही बात लिखी है कि नहीं लिखी है ना। तो इसके आधार पर प्रभुपाद जी क्या सिद्धांत स्थापित करना चाहते हैं, शरीर और शरीर का जानने वाला अलग है। ये श्लोक प्रभुपाद ने यहां उद्धृत क्यों किया है, शरीर को शरीर के जानने वाले आत्मा से अलग दर्शाने के लिए। बद्ध जीव ये जान सकता है कि वो शरीर से अलग है। अब देखो प्रभुपाद ने श्लोक का संकेत दे दिया, देहिनो अस्मिन् में ये पहले बताया गया, मिला नीचे मिला ना, दोबारा आ गया ना, ठीक है। अब पुनः क्या बात कह रहे हैं, जीव शरीर से अलग है, क्षेत्रज्ञ क्षत्र क्षेत्र से भिन्न है। कभी मैं सुखी हूं, कभी मैं अपने आप को मानव समझता हूं, कभी स्त्री समझता हूं, कभी कुत्ता और कभी बिल्ली। ये जीव जो है वो शरीर को ये कहता है, भाई सुखी कौन है, शरीर। मानव कौन है, शरीर। स्त्री कौन है, शरीर। बराबर कुत्ता कौन है, शरीर। जीव तो ना कुत्ता है ना स्त्री है ना पुरुष है, ना सुखी है ना दुखी है, राइट। तो प्रभुपाद जी एक सिद्धांत स्थापित कर रहे हैं कि कभी कभी हम अपने आप को सुखी मानते हैं और कभी कभी पुरुष, कभी स्त्री मानते हैं और कभी कभी कुत्ता बिल्ली। तो ये है शरीरों की उपाधियां, जीव की नहीं है। ये क्यों प्रभुपाद जी सिखाना चाह रहे हैं, शरीर को आत्मा से अलग समझने के लिए। अब हम कपड़े भी पहनते हैं और भी कौन से बालों के स्टाइल बनाते हैं, परंतु हम तो उनसे अलग ही है ना। थोड़ा प्रयास करें तो शरीर को शरीर से अलग समझ सकते हैं। अब यहां प्रभुपाद ने क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का विभाग समझाया। अब लिखते हैं ये जो पहले के 6 अध्याय भगवत गीता में बताए गए हैं उसमें जीव आत्मा जो क्षेत्रज्ञ है उसके स्वरूप का वर्णन हुआ है। लिखा है ऐसे कि नहीं, हाँ इन द फर्स्ट 6 चैप्टर ऑफ भगवत गीता लिखा है ना, पहले भगवत गीता के 6 अध्यायों में शरीर को जानने वाला मतलब जीव आत्मा, ठीक है, उसकी क्या स्थिति है और वो कैसे भगवान को जान सकता है ये बताया गया, ठीक है। बीच के 6 अध्यायों में भगवान के साथ हमारा संबंध क्या है जीव का, और परमात्मा और भक्ति के विषय में बताया गया है। परमात्मा क्यों लिखा भगवान ने, भगवान के साथ संबंध लिख के परमात्मा क्यों लिखा, लिखा है क्या, देखो परमात्मा इसलिए लिखा कि भक्ति वाले तो भगवान से संबंध स्थापित करना चाहते हैं, परंतु योगी परमात्मा का ध्यान करते हैं, ज्ञानी वो मिक्स भक्ति है ना, इसलिए ये शब्द लिखा। मिक्स भक्ति में परमात्मा का, ज्ञानी भी परमात्मा तक और योगी भी परमात्मा तक, या वैकुंठ में चतुर्भुज रूप तक, तो इसलिए अलग करके लिखा। इन अध्यायों में एक खास बात क्या बताई गई है कि भगवान स्वामी है और जीव सेवक है। हर स्थिति में जीव सेवक है और इस अपने स्वरूप को न जानने के कारण, उसको भूलने के कारण दुख भोग रहा है, ऐसे लिखा है। जब पुण्य कर्मों से प्रबुद्ध हो जाएगा और भगवान का शरण ले लेगा, अब यहां कौन सा श्लोक प्रभुपाद ने उल्लेख किया जरा देखो बताओ, अर्था आर्तो जिज्ञासुर अर्था आर्थी ज्ञानी च भरतृष्वा, ये लिखा है। क्योंकि इसमें जो लिखा है सुकृतिनु की परिभाषा, ये प्रभुपाद जी सातवें अध्याय तक का वर्णन कर रहे हैं, परमात्मा शब्द लिखा था इसलिए, क्यों मिक्स भक्ति का वर्णन है, इसका अर्थ ये हुआ ना। अब तेरहवें अध्याय प्रभुपाद लिखते, अब तेरहवा अध्याय शुरू हो रहा है, जीव प्रकृति के संबंध में कैसे आया, संपर्क में कैसे आया, क्या लिखा है देखो, और मुक्त कैसे हो सकता है, कर्म के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से या भक्ति के माध्यम से। इसका अर्थ है, आपको याद है हम आपको दो सिद्धांत हर छह अध्यायों के बताए थे, याद है किसी को? पहले छह अध्यायों में मूल दो सिद्धांत क्या है, आत्मा कार्य, क्या पहला सिद्धांत है, पक्का लिखो लाल पेन से याद करके, कि जीव को हर हाल में कर्म करना पड़ेगा, जीव का स्वरूप ही है क्रियाशील होना, उससे कोई नहीं बच सकता, यह है पहला सिद्धांत। और दूसरा सिद्धांत है, कार्य करते हुए बंधन से कैसे मुक्त हुआ जाए, ये पहले छह अध्याय में ये दो ही बातें हैं। और आपका एक निबंध इसके ऊपर है कि कार्य करने को निष्क्रिय से कैसे महान कहा गया है ना, एक कार्यशीलता को निष्क्रिय से कैसे महान कहा गया है। मध्य के छह अध्यायों में दो सिद्धांत कौन से हैं, क्या करें कि कर्म के बंधन में न पड़े, और वो है भक्ति। क्या करें जो भक्त के, जो कर्म के बंधन में न पड़े, वो क्या है, भक्ति। किसकी करें भक्ति, भगवान। तो भक्ति और भगवान का वर्णन है बीच के छह अध्यायों में, दो ही सिद्धांत है। अब पहले वाले से जोड़े तो, पहले छह अध्याय से जोड़े तो, कर्म करते हुए बंधन में कैसे नहीं पड़ सकते, बोले जब भगवान के लिए कर्म करें, तो बीच के छह अध्यायों में क्या है, भगवान। तो भगवान के लिए जो कर्म कैसे करें, बोला भक्ति। तो भगवान और भक्ति ये विषय है। अब जो छह अध्याय अंतिम के हैं उसमें प्रभुपाद जी अब क्या लिखते हैं, यहां पढ़ो दो सिद्धांत। पहला सिद्धांत, जीव प्रकृति के बंधन में कैसे पड़ा, जीव का प्रकृति के बंधन में पड़ने का कारण क्या है, यह पहला सिद्धांत है। और दूसरा सिद्धांत है, उससे बंधन से मुक्त कैसे हो। अब देखिए यही लिखा है प्रभुपाद ने, यहां आप जो पढ़िए अभी तीसरे अध्याय में क्या लिखा है, तीसरे अध्याय से क्या लिखा है, तेरहवें अध्याय से क्या लिखा है,
किस प्रकार जीव अपना प्रकृति के संपर्क
ठीक है, तो ये दो सिद्धांत समझ में आ गया।
दूसरा सिद्धांत क्या है?
बंधन में कैसे आया और मुक्त कैसे होगा? तो आइए तीसरे श्लोक को पढ़ने जा रहे हैं। अब ये तीसरे श्लोक का मुख्य उद्देश्य है, भगवान अपने आप को क्षेत्रज्ञ के रूप में स्थापित करने जा रहे हैं। क्षेत्रज्ञं चापि मां विधि सर्वक्षेत्रेषु भारत, क्षेत्र क्षेत्रज्ञोर्ज्ञानम् यत्तज्ज्ञानम् मतं मम। हे भरतवंशी, हे भारत, ये जान लो कि मैं भी क्षेत्रज्ञ हूं। कृष्ण कहता है मैं भी क्षेत्रज्ञ हूं, तो अर्जुन कहते किसका? मेरे क्षेत्र का तो आपने बताया, मेरा शरीर का मैं हूं। बोला मैं सब क्षेत्रों का क्षेत्रज्ञ हूं। ये सब खड़े ना सामने, इधर उधर सबका मैं स्वामी हूं, मैं उन सबका। तो सबका भगवान क्षेत्रज्ञ कैसे हैं? परमात्मा के रूप में, सबके हृदय में परमात्मा के रूप में बैठे हैं, इसलिए भगवान सबके क्षेत्रज्ञ हैं। ये क्षेत्रज्ञ क्या करता है? देखो, पहला क्षेत्रज्ञ क्या करता था? जीव क्षेत्रज्ञ क्या करता है? कर्म करता है, उसका दुख सुख का फल भोगता है, नहीं तो मुक्त होता है। ये दूसरा क्षेत्र क्या करता है? इसका काम क्या है? केवल साक्षी है, और भी कुछ काम करता है जो 13वें अध्याय में हम सीखेंगे। उपदृष्टा, हनुमंता, भरता, भोक्ता, महेश्वर, ये काम है दूसरे क्षेत्रज्ञ का। ठीक है, अब प्रभुपाद जी कहते हैं ऐसे जो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के ज्ञान को जानता है, मत कहते हैं भगवान, यहां अपना मत दे रहे हैं। मेरे मत में भगवान कहते हैं, मेरे मत में, मेरा राय ये है, ज्ञान किसको कहे? ज्ञान की परिभाषा बता रहे हैं। अब क्षेत्र क्षेत्रज्ञ की बात हो गई, अब ज्ञान की बात कर रहे हैं इसमें। मेरे मत में ज्ञान उसको कहते हैं जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को जानता है, जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को जानता है उसको ज्ञान कहते हैं। अब आप जरा बताइए इसको कैसे समझें? ज्ञान क्या है? जो प्रकृति को जानता है, जिसने क्षेत्र बनाया, जो दोनों पुरुषों को अथवा दोनों क्षेत्रज्ञ को जानता है उसको ज्ञान कहते हैं। ये बात समझ में आई? तो अभी तक कितनी बातें, कितने 6 शब्दों में कितने शब्दों का वर्णन भगवान ने किया? हो गया ना, क्षेत्र का हो गया, क्षेत्रज्ञ का हो गया, और ज्ञान का हो गया। अभी और इनका विस्तार आएगा, क्षेत्र किसका बना हुआ है ऐसे भी आएगा आगे। तो बलदेव विद्याभूषण क्या लिखते हैं? पहले भगवान ने जीव को क्षेत्रज्ञ कहा था, परंतु वो था, उसको केवल शरीर का ज्ञान है। अब परमात्मा को क्षेत्रज्ञ कह रहे हैं, सबके शरीरों को जानता है। मैं सब क्षेत्रों का क्षेत्रज्ञ हूं, सब शरीर में परमात्मा के रूप में बैठा हूं। तो यहां एक उदाहरण दे रहे हैं बलदेव विद्याभूषण, राजा का और सामान्य व्यक्ति का। भाई राजा तो पूरे अपने राज को जानता है, व्यक्ति अपने घर को जानता है, ये उदाहरण दे रहे हैं। दूसरा उदाहरण आपको देना हो तो क्या देंगे? दो क्षेत्रज्ञ का, एक किसान अपने को जानता है और सरकार सबको जानता है। ठीक है, अब स्मृति शास्त्रों में, स्मृति शास्त्रों का मतलब पुराणों में भी वर्णन है इसका, क्षेत्राणि शरीराणि बीजम चापि शुभाशुभे तानि वेति संयोगात्मा तथा क्षेत्र का उच्चते। ये श्लोक दिया है महाभारत का आपके अपने बेटे है ना, महाभारत 12 339 6 12 339 6 जो महाभारत से दिया हुआ है, मतलब ये श्लोक कहां से? महाभारत से। इसका अर्थ कोई करे आप में से बिना देख के इसका अर्थ करो शब्दों से। क्षेत्राणि ही शरीराणि, शरीरों को ही क्षेत्र कहा जाता है। बीजम चापी शुभा शुभे, शुभ और अशुभ, शुभ का मतलब स्वर्ग और अशुभ का मतलब नरक, अथवा शुभ का मतलब सुख और अशुभ का मतलब, वो दोनों प्राप्त होते हैं इस क्षेत्र से। तानी वेती स, जो इनको जानता है, वेती का मतलब जानता है, योग आत्मा तथा, क्योंकि वो योग आत्मा है इसको जानता है इसलिए उसको क्षेत्रज्ञ कहते हैं। ज्ञान क्या है? अब ये प्रश्न, ये तीसरा, ज्ञान क्या है? भगवान कहते हैं मेरे मत में ज्ञान वो है जो दो क्षेत्रज्ञ को अलग अलग समझे। अब इसका मतलब जो ज्ञानी है वो मूर्ख है, वो दोनों को एक समझते हैं। आत्मा जो परमात्मा कहते हैं उनको तो ज्ञान है ही नहीं, उनको हम ज्ञानी कहते हैं उनको ज्ञान है ही नहीं, अज्ञानी को ज्ञानी कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार वो तो अज्ञानी है, वो तो कहते हैं आत्मा जो परमात्मा, तो फिर तो दो क्षेत्र के नहीं जानते हैं ना, तो फिर उनको कैसे, उनको ज्ञान तो है ही नहीं, इसका अर्थ है। और दोनों का शरीर और प्रकृति से क्या संबंध है, और इसके अतिरिक्त जो है वो सब अज्ञान है। ये ज्ञान है और इसके अतिरिक्त सब अज्ञान है। आप कहते हैं आपको ऐसे समझना चाहिए, तीनों आपस में मिक्स हो गए। कौन तीन आपस में मिक्स हो गए बोलिए? जीव जगत और जगदीश, तीनों मिक्स हो गए कि नहीं हो गए? ये शरीर, इसके अंदर हम भी बैठे हैं, परमात्मा भी बैठे हैं, तो तीनों एक जगह बैठे हैं ना। पर ये हमको समझना चाहिए कि तीनों एक जगह बैठे हुए हैं परंतु तीनों का स्वभाव अलग है, तीनों का गुण अलग है। एक भोक्ता है, एक भोग्य है, और एक दोनों का स्वामी है। भोक्ता कौन है? जीव। भोग्य कौन है? प्रकृति। और दोनों का कौन है स्वामी? परमात्मा। अब ये उदाहरण के देते हैं, एक जैसे रंगा हुआ कपड़ा, कपड़े में रंग भी है, धागा भी है और रंगने वाला भी है कि नहीं? कि कपड़े में धागा भी है और रंग भी है ना, तो रंग भी धागा भी और दोनों को रंगने वाला भी कोई और है, तो तीन चीजें साथ एक जगह मिली हुई है कि नहीं? हम जो कपड़ा पहन के बैठे हैं इसमें तीन मिले हुए हैं कि नहीं? तीन मिले हुए हैं, धागा, रंग, रंगने वाला। तो रंगने वाला तो भगवान हो गया, कंट्रोलर, जो दोनों को चाहे तो काला रंग दे, चाहे तो ब्लू दे, चाहे तो सेफ्रॉन दे के सफेद दे के ग्रीन दे, नहीं, रंग तो मर्जी है, कौन करेगा? रंग तो जैसा देना चाहे स्वामी देता है। अब रंग क्या है? अगर इसमें हम अपनी बुद्धि से समझे तो रंग है प्रकृति, क्योंकि कपड़ा तो एक जैसा ही है, रंग बदलता है तो शरीर बदलते हैं, आत्मा तो एक जैसी है। तो इस उदाहरण में रंग हो जाएगा शरीर, जीवात्मा हो जाएगा कपड़ा, और रंगने वाला हो जाएगा परमात्मा। पर यहां तो दो लाइनें लिखी लेकिन इसका अर्थ ये निकलता है, समझ में आया? इसलिए वेदांत के वेद व्यास लिखने वाले ने लिखा है, नत्तो दृष्टांत भावात, भगवान को भौतिक जगत के द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है। अब इन तीनों में अंतर क्या है? बोला ये श्रुति और कहती है, क्या कहती है? पृथ्वीगात्मानं प्रेरिणां प्रेत प्रेरितारं च मत्वा जुष्टस्ततस्तेनामृतत्वमेति। वो मुक्ति प्राप्त करता है जो जीव समझता है कि भगवान प्रेरता है और मैं केवल निमित्त मात्र हूँ, वही मुक्ति पा सकता है। ये उपनिषदों के कुछ श्लोक हैं, हमारे उसमें हैं तो पढ़ें, नहीं तो छोड़ दें। बहुत श्लोक हैं उपनिषदों के, यहाँ श्वेता श्वेत उपनिषद का और भी श्लोक है। भोक्ता भोग्यम आगे आएगा, ये है क्षरम प्रधानम अमृताक्षरम हर है कि नहीं है? नहीं है। प्रधान जीव अजाम एकाम लोहिता, ये है बलदेव विद्याभूषण, बहुत लंबा लिखा है, अभी तक चल रहा है। बहुत लंबा, कोई 4-5 पेज है। श्री प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं चलिए फिर देखते हैं पहले। प्रभुपाद जी पहले तीन बातें क्या लिख रहे हैं, हमको वही तीन समझना चाहिए क्या? शरीर जीवात्मा और दोनों का परमात्मा जो उनका स्वामी है, और हर शरीर में दो प्रकार के आत्मा हैं, एक जीवात्मा और एक परमात्मा, ठीक है। और परमात्मा भगवान का विस्तार है श्री कृष्ण का, इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मैं भी ज्ञाता हूं। तो कृष्ण कैसे ज्ञाता है? परमात्मा के रूप में। तो ये तो ठीक है, इसके बाद क्या है? अब प्रभुपाद जी यहाँ के इसके बाद क्या लिख रहे हैं, ज्ञान किसको कहते हैं? यहाँ से प्रभुपाद ज्ञान की परिभाषा लिख रहे हैं, देखो क्या लिखा है। जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विषय में बहुत ही बारीकी से, क्या लिखा है, सूक्ष्मता से बारीकी से जानेगा भगवद गीता के अनुसार, उसको ज्ञान कहते हैं। इसके बाद जो लिखा है वो क्षेत्र क्षेत्र के सामान्य शब्द है, वो आप समझ सकते हैं। फिर उदाहरण दिया है कि एक नागरिक केवल अपने जमीन को जान सकता है, बतन राजा सारे अपने राज्य के सब जमीनों को जानता है, ये उदाहरण है। ये राजा का उदाहरण दे दिया प्रभुपाद ने। फिर क्या लिखा है? अब प्रभुपाद जी दूसरे विषय पे आते हैं। राजा और नागरिक का उदाहरण दिया, नागरिक जीवात्मा हुआ, राजा परमात्मा हुआ, और शरीर जो है वो एक क्षेत्र हुआ, राज दूसरा क्षेत्र हुआ। अब ऋषि के शब्द आ रहा है, देखो शरीर बना हुआ है इंद्रियों का, और भगवान इंद्रियों के स्वामी है, वो इंद्रियों के वास्तव में स्वामी हैं, जैसे राजा पूरे राज का स्वामी होता है, और जो नागरिक है वो केवल गौण है। तो भगवान कहते हैं मैं भी क्षेत्रज्ञ हूं, इसका मतलब भगवान क्या है? परम ज्ञाता है। किसका? लिखा पड़ा है परम ज्ञाता है दो चीजों का, किसका? जीवात्मा का और वेष्टि शरीर का, ठीक है। अब ये श्लोक दे दिया है दोबारा समझाने के लिए, वही हम जो पढ़ा था, क्षेत्राणि शरीराणि बीजम चापि शुभाशुभे तानि वेति संयोगात्मा ततः क्षेत्रज्ञम क्षेत्रज्ञ उच्यते। अब पढ़िए इसका हिंदी अनुवाद।
यह शरीर क्षेत्र कहलाता है और इस शरीर के भीतर इसके स्वामी तथा साथ में परमेश्वर का वास है, जो शरीर तथा शरीर के स्वामी दोनों को जानने वाला है, इसलिए उन्हें समस्त क्षेत्रों का नेता कहा जाता है।
तो इस श्लोक में प्रभुपाद जी ने अर्थ जीवात्मा के बजाय मुख्य रूप से परमात्मा का लिया है क्षेत्रज्ञ में, हाँ लग रहा है कि नहीं? अब कहते हैं कैसे इन तीनों को समझा गया है, देखो आगे क्या लिखा है।
कर्म क्षेत्र कर्म के ज्ञाता तथा समस्त कर्मों के परम ज्ञाता का अंतर आगे बतलाया जा रहा है।
इसको ज्ञान कहा जाता है। क्या ज्ञान है? वास्तविक ज्ञान क्या है, सिद्ध पूर्ण ज्ञान क्या है, सही ज्ञान क्या है, शरीर का, शरीर की क्या,
शरीर आत्मा तथा परमात्मा के स्वरूप की सम्यक जानकारी।
ओके,
ज्ञान नाम से अभिभूत की जाती
है, ठीक है, उसको ज्ञान कहा जाता है। ये कृष्ण का मत है,
आत्मा
को परमात्मा से अलग समझे इसी को ज्ञान कहते हैं। जो ये नहीं जानता है वो ज्ञानी नहीं है। अब वो तीन शब्द है जिसको हमने कहा मिक्स है, एक जगह मिक्स है, वो क्या पढ़ा है देखो, प्रभुपाद ने क्या लिखा है, और ईश्वर। तो प्रकृति है शरीर, पुरुष है जीव, और ईश्वर है भगवान या परमात्मा, दोनों का नियंता। इन तीनों को अलग अलग समझना चाहिए। अब प्रभुपाद ने उदाहरण दिया, देखो वही कपड़े वाला उदाहरण दूसरे तरीके से दिया है। क्या लिखा है देखिए, एक चित्रकार है और एक चित्र है और एक क्या वो क्या होता है, ब्रश, ईजल, यहाँ ईजल लिखा है, ईजल। अब इसको बताइए कौन क्या बनेगा इसमें, ऊपर क्या लिखा है प्रभुपाद ने, इन तीनों को एक नहीं समझना चाहिए। कौन क्या बना भाई आपके विचार, हमने कपड़े के आधार पे कहा था, वहां लिखा कुछ नहीं था, एक अनुमान ये था। जीवात्मा चित्रकार है, परमात्मा तो है चित्रकार। हाँ, अब चित्र क्या है, चित्र जीवात्मा है, और बुर्श ये बहुत बड़ा टेढ़ा काम है भाई, देखो बुर्श को चलाने वाला तो चाहिए, बुर्श जड़ है और वो भी जड़, दोनों जड़ दिख रहे हैं। तीन बज रहे हैं इसलिए इसको आप सोचना कल के इसमें क्या क्या है। वो आसान लग रहा था,
ये भी समझ में आ जाता है,
थोड़ा विचार करना कल इसके ऊपर फाइनल। ये तो इसका तात्पर्य तो पूरा करें, प्रभुपाद का भी एक और आधा पेज और पढ़ा है, चलो इसका कल पढ़ के आना। तो हमने तीन श्लोक तक पूरा हो गया, कल सात श्लोक ये पूरे हो जाएंगे, फिर आगे देखें क्या होता है, और दूसरा विभाग क्या है वो भी देख लो जरा। तीसरा विभाग है 8 से 12। भगवान अधिक ज्ञान और मुक्ति के विषय में वर्णन करते हैं। अच्छा, भगवान ज्ञान का वर्णन करेंगे तो क्या बोलेंगे, प्रकृति क्या है, शरीर क्या है, जीव क्या है, यही बात करेंगे, इससे मुक्त कैसे हो। 8 से 12 ये हमारा तीसरी क्लास में आ जाएगा, फिर देखेंगे आगे क्या होता है। ठीक है, हरे कृष्ण।